मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में मैं अभी कोई बात नहीं करने की स्थिति में हूं, उस पर बाद में अगर समय रहा तो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो दूसरी घटनाएं हैं, आइए पहले उन्हें देख लेते हैं। कल एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। पता नहीं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आप इसे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर साल भर से आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने उस घटना को पकड़ लिया होगा और आपने यह भी निर्धारित कर लिया होगा कि इस घटना का इस्तेमाल आप किस तरीके से करेंगे। जी हाँ, ये जो घटना है वो ये है कि नोएडा में, जो उत्तर प्रदेश में है, नोएडा में जो सुपरटेक कंपनी है उसके 40 मंजिला जो ट्विन टावर थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। सोच करके देखिए कि 40 मंजिला टावर गिराकर नष्ट कर दिया गया, बारूद से उड़ा दिया गया, धूल में तब्दील हो गया। और कंपनी का कहना है कि इससे उसे लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मतलब एक बना बनाया इतना रिहायशी एरिया नष्ट कर दिया गया। सामान्य तौर पर सोचने से तो बड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन सिविल सर्विस की दृष्टि से आप इसे कैसे एनालाइज करेंगे। इसको लेकर के बकायदे जनसत्ता ने एडिटोरियल कमेंट लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एडिटोरियल कमेंट लिखा है। इसका मतलब है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया और जनसत्ता जैसे अखबार इस पर एडिटोरियल कमेंट लिख रहे हैं। तो दोस्तों, इससे कुछ तथ्य उभर कर आते हैं। पहला ये है कि इतना ऊंचा टावर बन रहा है, बनकर खड़ा हो गया। कैसे बनकर खड़ा हो गया? क्योंकि जो गिराया गया है उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे सिंपल सा कारण यह है कि इसको बनाने में जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए, राइट? वहां के जो लोग रहने वाले थे, बकायदे कुछ सिविल सोसाइटीज भी इसके खिलाफ गई। पहले हाईकोर्ट से सुपरटेक कंपनी हारी, सुपरटेक कंपनी ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया, वहां भी उसे हार का मुंह देखना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि टावर ध्वस्त कर दिया जाए। अब देखिए, वैसे तो राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे ध्वस्त कराया जा रहा है। तो इसको ध्वस्त कराने का मतलब है एक मैसेज देना कि अगर आप कानूनों का उल्लंघन करके ऐसा कुछ करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो पहला तो यह है कि जो जुडिशियल की जो पावर है और लोगों का जो उसके प्रति विश्वास है वो यहां इस्टैब्लिश हो रहा है, री इस्टैब्लिश हो रहा है। दूसरी बात है कि ये बन कैसे गया? देखिए, सीधी सी बात है कि जब इस तरह के निर्माण होते हैं तो बकायदे लोकल अथॉरिटी होती, जिसे डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। आपके सामने बहुत से ऐसी अथॉरिटीज आई होंगी जो शहरों के विकास के लिए बनाई गई हैं, प्राधिकरण है वो। इन प्राधिकरण का काम ही होता है कि वो शहर के विकास को ठीक ठाक तरीके से प्लान करें और देखें कि ठीक तरीके से शहर विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? तो फिर ये कैसे बन गया? एक दिन में तो खड़ा हुआ नहीं, सालों लगे होंगे। 40 मंजिला इमारत को खड़े होने में सालों लगे होंगे और कोई उसमें एक ही फ्लैट नहीं है। तो जो हमारी अथॉरिटी थी वो क्या कर रही थी? तो सीधे सीधे इस टावर का ध्वस्त होना एक प्रकार से भ्रष्टाचार के टावर का ध्वस्त होना है, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? प्रत्यक्ष तौर पर ब्यूरोक्रेसी और बिल्डर्स। अब अप्रत्यक्ष तौर पर आप जो भी अनुमान लगा लें, लेकिन ये दो तो बिल्कुल सामने हैं, क्योंकि अथॉरिटी ने ही इसकी परमिशन दी होगी या जो भी इग्नोर किया होगा कि कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो वह भी इग्नोर करने वाली अथॉरिटी ही होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। दूसरी बात इससे जो जुड़ा हुआ है वो ये है कि भारत में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने धन का, जो थोड़ा बहुत बचा करके रखते हैं, देखिए सर्विस क्लास और ये वाले लोग तो ज्यादातर बैंकों में जमा कर देते हैं, FD वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि वो दूसरे चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन जो बिजनेस क्षेत्रों में है, इंडस्ट्री वगैरह में है, वो बेसिकली रियल इस्टेट में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो जमीन खरीद लेंगे या फ्लैट खरीद लेंगे, इसे हम कहते हैं रियल इस्टेट। और पिछले कुछ सालों से, हालांकि एक रेयर कानून आया बाद में जिसको हम रेरा कहते हैं, 2016 में एक कानून आया था इनको प्रतिबंधित करने के लिए। सोच करके देखिए कि इससे पहले ठेकेदारों पर नियंत्रण रखने के लिए हमारे यहां कोई कानून ही नहीं था। होता क्या था कि आपने एक फ्लैट बुक करा लिया या मकान बुक करा लिया, बैंक से उसका उसके लिए लोन ले लिया, ठीक है। ठेकेदार ने कहा था, उस कंपनी ने कहा था कि आपको 3 साल में वो पोजीशन दे देंगे, 10 साल से आप चक्कर काट रहे हैं, आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है, अब आपको बैंक को रिपे करना पड़ रहा है, बैंक की ईएमआई तैयार हो गई है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप हेल्पलेस हैं। तो ये जो खासकर बिल्डर्स हैं, इस तरह की बहुत मनमानियां इन्होंने की हैं और इसका दुष्प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि फिर लोग अपने को विड्रॉ करने लगते हैं कि नहीं यार रियल एस्टेट से बचियो। जबकि जब रियल एस्टेट डेवलप होता है, अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट से देखें तो आप यह कह लीजिए कि इकोनॉमी की ग्रोथ सबसे तेज होती है रियल एस्टेट, उसमें सीमेंट लग रहा है, उसमें छड़ें लग रही हैं, मजदूर लग रहे हैं, कितनी चीजें होती हैं जो खासकर मकान भवन निर्माण में लगती हैं। अगर उसी पर से लोगों का अविश्वास पैदा हो जाए तो स्वाभाविक है कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो गति है इससे प्रभावित होगी। तो ये इसका एक अलग एंगल है। तो दोस्तों, मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का वो एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, जनसत्ता का भी एडिटोरियल कमेंट आपके पास होगा, थोड़ा सा आप इस पर नजर मार लीजिएगा। अगर आपने रेडियो न्यूज सुनी हो तो उसमें कुछ दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। एक तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने खासकर बताया है कि असम का एक गांव है बोंगाई, वहां एक संपूर्ण योजना लागू की गई है, खासकर कुपोषण के खिलाफ एक योजना है संपूर्ण योजना। उसमें होता यह है कि आपको मालूम है कि जगह जगह पर हमारे आंगनबाड़ी केंद्र इस तरह के खुले हुए हैं, तो वहां जैसे एक माँ है जिसका बच्चा कुपोषित है और एक ऐसी माँ भी है जिसका बच्चा कुपोषित नहीं है, तो वहां व्यवस्था ये की गई इस योजना के तहत कि जिसका बच्चा कुपोषित नहीं है, वो जो माँ है, वो जो कुपोषित बच्चा है उसकी माँ के पास जाती है, उसको समझाती है, बुझाती है, उसकी मदद करती है। और खासकर इस योजना के जरिए सोच करके देखिए कि एक साल में वहां के 90% कुपोषण दूर हो गया है। जन सहभागिता के द्वारा समस्याओं के निदान का यह कितना खूबसूरत उदाहरण है। मुझे लगता है कि आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि कुपोषण वगैरह पर मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब आपकी राय पूछी जाए, उपाय की सुझाइए, इस तरह के प्रश्न किए जाएं, तो आप बकायदे इसे कोट कर सकते हैं, असम के बोंगाई गांव में, और योजना का नाम है संपूर्णा योजना। प्रधानमंत्री जी ने कल एक बात का और उल्लेख किया था और वो था अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023। यूएनओ ने पिछले वर्ष ही इसे घोषित कर दिया था कि सन 2023 में विश्व मोटा अनाज वर्ष मनाया जाएगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कहते हैं, इंग्लिश में इसे मिलेट ईयर कहते हैं, मिलेट। दोस्तों, भारत के संदर्भ में यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि अब आप भारत में भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे मिलेट की डिमांड्स बहुत बढ़ रही, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत अच्छा भोजन माना जाता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो हमारे यहां मोटा अनाज जो पैदा होता है, इसकी खासियत होती है कि इसके लिए बहुत उपजाऊ जमीन नहीं चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छी रेन्स भी नहीं चाहिए कि बहुत अच्छी वर्षा हो तभी ये अनाज पैदा होगा। कम वर्षा में भी अनाज पैदा हो जाता है और कम उपजाऊ भूमि में भी यह अनाज पैदा हो जाता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है 1970 के आसपास जब मैं खासकर गांव में रहता था, तो जब अकाल पड़ जाता था तो अब जैसे धान की खेती तो खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको उसमें, लेकिन मोटा अनाज हो जाता था, मक्का हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाती थी। तो जो लोग हैं, जो किसान हैं या जो गरीब लोग हैं, उनके पास कम से कम खाने के लिए कुछ तो होता था। लेकिन धीरे 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 मोटा अनाज की बुआई कम की जाने लगी, दुनिया भर की दूसरी फसलें बोई जाने लगी, तो मोटा अनाज का उत्पादन हमारे यहां बेहद कम होने लगा। अब इसे फिर से बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, फसल प्रतिरूप में परिवर्तन की दृष्टि से भी, जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव फसलों पर पड़ रहा है उसकी दृष्टि से भी, क्योंकि जो मोटा अनाज है उसमें जलवायु परिवर्तन को बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, कीटनाशक प्रतिरोधी भी ये बहुत ज्यादा होते हैं। इस दृष्टि से भी अब भारत सरकार इसको बहुत ज्यादा तरजीह दे रही है। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है मोटा अनाज, आपको इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रेडियो न्यूज में ही आपने एक और खबर, छोटी सी ही है, लेकिन जिस तरीके से अब प्री एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, अभ्यास ब्रज प्रहार। ब्रज प्रहार ये भारत और अमेरिका दोनों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो 21 दिनों का अभ्यास था, पूरा हो गया है, और ये हिमाचल के बकलोह में हुआ था, हिमाचल के बकलोह में। मुझे लगता है कि अगर सामान्य स्थिति होती तो शायद यह न्यूज नहीं बनती, तो यह न्यूज बनी क्यों? आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत और चीन में लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है। भारत ने चीन को एक प्रकार से चेतावनीपूर्ण शब्द में अपनी कुछ बातें कही भी हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर भारत और अमेरिका कोई सैन्य अभ्यास कर रहे हैं तो इसका एक इनडायरेक्ट मैसेज भी है चीन के लिए या दूसरे उन राष्ट्रों के लिए जो भारत को कमजोर समझते हैं या उनको लगता है कि कुछ भी किया जा सकता है, भारत पर अटैक किया जा सकता है, तनाव बना करके रखा जा सकता है, भारत से लाभ उठाया जा सकता है, उनके लिए भी इनडायरेक्टली ये मैसेज है। देखिए होता क्या है कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो लेटेस्ट बातों को शामिल किया जाना चाहिए, ये मैं आपको शुरू से ही कहता आ रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि भ्रष्टाचार के मामले पर आप कुछ उत्तर लिख रहे हैं तो आप ट्विन टावर ये सुपरटेक वाले को कोट कीजिए, है ना। जमानों की बात करेंगे तो फिर वो एग्जामिनर को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, वो तो लगता है कि अब बस किताबों में आपने पढ़ लिया 10 साल पुराने एडिशन में और आप उसे कोट कर रहे हैं, लेकिन जब आप बिल्कुल लेटेस्ट बातें रखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, आप करंट अफेयर से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। तो दोस्तों आपको अपने आंसर राइटिंग में हमेशा इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अब चूंकि वक्त नहीं है कि मैं आपसे अब मुख्य विषय के बारे में अलग से कुछ बात करूं, तो अब इसे यहीं समाप्त करता हूं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से एक मित्र का नाम है प्रेरणा शर्मा जयपुर से, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।